हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहार, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन, यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी राधे राधे, जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय गौर हरि जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय गौर हरि प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद श्री हरि नाम संकीर्तन की जय श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आज श्री राधाष्टमी का महान अवसर है तो श्री राधा रानी के बारे में उनका कुछ गुणगान करने का हम प्रयास करेंगे। वैसे भगवान की साक्षात लादिनी शक्ति है और भगवान जो संपूर्ण त्रि जगत को आकर्षित करते हैं उनको भी आकर्षित करने वाली है, उनको भी वश में करने वाली है। तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है सबको श्लोक, तो ये श्लोक आज हम इसको स्मरण करने का प्रयास करेंगे। भजामि राधाम अरविंद नेत्राम स्मरामि राधाम मधुरस्मितास्याम वदामि राधाम करुणाभरार्द्राम ततो ममान्यास्ति गतिर्न कापि भजामि राधाम अरविन्द नेत्राम स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्द्रां ततो ममान्यास्ति गतिर्न कापि भजामि राधामरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्द्रां ततो ममान्यास्ति गतिर्न कापि भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्द्रां ततो ममान्यास्ति गतिर्न कापि भजामि राधाम अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्द्रां ततो ममान्यास्ति गतिर्न कापि भजामि राधाम अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्द्रां ततो ममान्यास्ति गतिर्न कापि माताजी भजामि राधामरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्द्रां ततो ममान्यास्ति गतिर्न कापि भजामी का अर्थ है मैं भजन करता हूँ या करती हूँ। राधाम राधा रानी का, अरविंद नेत्राम जिनके नयन किसकी तरह है, कमल की पंखुड़ी की तरह है, कमल की तरह सुंदर नयन है। स्मरामी मैं स्मरण करता हूँ राधाम श्री राधा का। मधुर स्मितास्याम जिनका स्मित कैसे है, अत्यंत मधुर है। वदामी राधाम मैं गुणगान करता हूँ राधा रानी का। करुणा भरार्द्राम तो जो कैसी है, करुणा से आर्द्र चित्त है उनका, करुणा से पिघला हुआ चित्त है। ततो ममान्यास्ति गतिर्न कापि उनके अलावा मेरी कोई और गति नहीं है। तो ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का उन्होंने रचा हुआ श्लोक है श्री स्तवावली से। तो एक बार सब साथ में अर्थ देखते हैं। मैं उन राधा रानी का भजन करता हूँ जो जिनके नयन कमल के समान सुंदर हैं। मैं उन राधा रानी का स्मरण करता हूँ जिनका स्मित अत्यंत मधुर है। मैं उन राधा रानी का गुणगान करता हूँ जो करुणा से भरी हुई है, और उनके अलावा मेरी और कुछ गति नहीं है। तो ये सारे रूपानुगम प्रभुपादानुगम सारे वैष्णव है, हम साधक साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। बहुत बार क्या होता है, लोग पूछते हैं कि अरे अंतिम लक्ष्य जानने की क्या जरूरत है, अगला जो स्टेप है, अगला जो कदम है, अगला जो पायदान है उसके बारे में जान लो, अंतिम लक्ष्य की क्या आवश्यकता है। तो उनको एक ही हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप जब टिकट निकालते हैं कार्तिक यात्रा के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बोरीवली, फिर बोरीवली से कोटा, फिर कोटा से भरतपुर, ऐसा टिकट निकालते हैं कि सीधा मथुरा तक टिकट निकालते हैं, सीधा मथुरा, क्योंकि मालूम है वृंदावन जाना है। अभी ठीक है, गाड़ी अपनी एक एक स्टेशन लेके जाएगी, लेकिन टिकट कैसा निकालेंगे आप? पहले से ही तो पूरा टिकट निकालेंगे ना। वैसे ऐसा ब्रेक वाला जर्नी का टिकट निकालेंगे तो पैसे, पहले तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, बराबर ना तुलसी प्रभु? जितना लंबा डिस्टेंस जाना है उसका एक पहले से टिकट निकाले तो क्या होगा, सस्ता टिकट पड़ेगा। और चिंता भी कम होगी, थोड़ी ना हर स्टेशन पे गाड़ी बदलेंगे। और वो कनेक्टिंग गाड़ी मिलेगी भी नहीं कि वो भी मालूम नहीं हमको। तो इसलिए हर साधक वैष्णव को ये जानना आवश्यक है कि हमारा ध्येय है श्री राधा रानी के चरणों की सेवा और राधा कृष्ण, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर हम कहते हैं ना। लेकिन उसमें भी श्री राधा रानी के चरणों की गरिमा अधिक है। शिवजी पार्वती को कहते हैं, गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेज समर्चयत जपेद वा ध्यायते वापि स पातकी भवेत शिवे। गौर तेज माने राधा रानी, राधा रानी को उनका भजन किए बिना केवल कृष्ण का जो भजन करने जाते हैं, जपेद वा ध्यायते वापि, या उनका जप करते हैं या उनका ध्यान करते हैं केवल कृष्ण का, बिना राधा रानी के, बिना उनकी आह्लादिनी शक्ति के, तो क्या कह रहे हैं पार्वती जी को, सब पातकी भवेत शिवे। जय सत्य है श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। तो कह रहे हैं कि वो पातकी होगा, महापातकी होगा जो ऐसा होगा करेगा वो। तो इसलिए राधा रानी की महिमा गरिमा महत्ता समझने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि वही तो ध्येय है, फाइनल टिकट उधर का ही निकालना है हमको। तो लेकिन उसमें एक सावधानी हमको रखनी है। क्या सावधानी रखनी है कि एक बार श्रील सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड पर कथा कर रहे थे, और सभी जो वहां पे जमे थे, हम जानते हैं कि कैसे सब लोग अत्यंत रसिक कथा सुनने के लिए आते हैं, ऐसा सोचते हैं कि चलो केवल कृष्ण की रासलीला के बारे में ही चर्चा करी तो सच में हमको उससे रस प्राप्त होगा। लेकिन राधा रानी कृष्ण की गरिमा सिद्धांत तत्व के बारे में कोई चर्चा करेगा तो बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे लिए नहीं है, ऐसा अगर कोई सोचता है। तो उस प्रवाद को मिटाने के लिए श्रील सरस्वती ठाकुर ने क्या किया, कौन से भागवतम के पहले श्लोक के ऊपर 30 दिन तक एक ही श्लोक के ऊपर चर्चा की उन्होंने, 30 दिन तक रोज चर्चा कर रहे थे एक ही श्लोक के ऊपर। तो उससे क्या हुआ, जो केवल जिनको क्या कहते हैं आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सस्ता लेते हैं, वो सस्ता समझ के लेते हैं, समझते हैं अरे जैसे कोई मूवी देखने जा रहे हैं मनोरंजन के लिए, चलो वैसे ही राधा रानी की कथा सुनने के लिए चलते हैं मनोरंजन के लिए, ऐसे भाव से जो आते हैं मनोरंजन के भाव से, तो वो तो कभी कृष्ण कथा राधा रानी की कथा को स्पर्श ही नहीं कर सकते, ये उनका अधिकार ही नहीं है। वो दिखेगा सामने लेकिन जो है वो नहीं दिखेगा, अपने ही मन के पटल पर उनके उनके ही बुरे मन के विचार जो प्रोजेक्टेड है, अभी ये तो अच्छा प्रोजेक्टर है तो अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन दूषित हृदय से राधा कृष्ण की कथा सुनने से क्या होगा, अपने ही प्रोजेक्टर तो अपने मन का है, पटल भी अपने मन का है, ये भी दूषित ये भी दूषित, तो क्या नजर आएगा, वो असली लीला तो पर्दे के पीछे चालू है और हम क्या देख रहे हैं, केवल पर्दे के ऊपर ही जो मेरे ही मन के प्रोजेक्टर ने डाली हुई, मेरे ही जो कुछ गलत फहमियां वो मुझे दिख रही है, और मैं क्या सोच रहा हूं, मैं राधा कृष्ण की लीला देख रहा हूं। अरे भाई राधा कृष्ण की लीला सस्ती नहीं है, लक्ष्मी नारायण जी के लिए भी दुर्लभ है कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। उन हम तो बद्ध जीव है, मैं खास करके, तो हमको समझने की तो दूर की बात, जो साक्षात लक्ष्मी नारायण उनके विलास स्वरूप है, राधा कृष्ण के ही विलास अंश है लक्ष्मी नारायण, उनके लिए दुर्लभ है राधा कृष्ण की लीला। तो हम केवल अपने मनोरंजन से नहीं सुन सकते, ये बात बताने के लिए सरस्वती ठाकुर ने 30 दिन तक भागवतम के पहले श्लोक पर कथा की, ताकि क्या हो, जो ऐसे मनोरंजन वाले हैं वो स्क्रीन हो जाए, मतलब हट जाए। एक दिन, दो दिन, पहले दिन 1000 लोग आए थे, 30 दिन के बाद अगर 10 भी बचे तो भी ठीक है, उनके सामने कथा करेंगे लेकिन ये सही लोग हैं जो सच में तत्व के ऊपर जो लीला का प्रसाद है उसको समझना चाहते हैं। तत्व कैसा है, कोई भी हमारे इधर बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है आजकल, सबसे पहले क्या क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, नींव बनाते हैं उसकी, फाउंडेशन, वो तत्व की नींव है, सिद्धांत की नींव है, उसके ऊपर सारा लीला का प्रसाद है, पूरा महल उसके ऊपर बना हुआ है। लीला का सारा महल जो है वो तत्व की नींव के ऊपर बना हुआ है, अगर नींव ही नहीं डाली तो कैसे होगा, वो पत्ते के बंगले जैसा हो गया। बचपन में पत्ते के बंगले बनाए हैं एक के ऊपर थोड़ी सी हवा आ गई या किसी का थोड़ा सा टच हो गया, आप बना रहे हैं और आपके भैया और बहन ने आके थोड़ा सा कुछ उसमें कर दिया तो पूरा हो गया, पूरा जमीन दोस्त हो गया वो बंगला। तो वैसे ही मनोरंजन के लिए करी गई लीला कथा क्या हो जाएगी, जमीन दोस्त हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं टिक पाएगी, कुछ एक माया का झोंका आ गया, खत्म, सब खत्म। तो इसलिए ये हम तत्व पहले समझेंगे हम, तो राधा रानी का तत्व समझने से पहले हम कृष्ण का तत्व समझेंगे। राधा रानी का आविर्भाव है आज, लेकिन राधा रानी कौन है, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। तो कृष्ण कौन है सबसे पहले, तो हमारे आचार्य कहते हैं एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कला, आपने चंद्र को देखा होगा, एक एक दिन कला कला से बढ़ता है, जब 16 कला से पूर्ण होता है तो उसको पूर्णिमा का चंद्र कहते हैं, वो है कृष्ण। और बाकी जो अलग अलग कलाएं हैं, अष्टमी का चंद्र, एकादशी का चंद्र, द्वादशी का चंद्र, चतुर्दशी का चंद्र, वो सब कौन है, भगवान के विविध अवतार है, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, रामचंद्र अवतार, बल्कि द्वारका के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण, ये सब उन्हीं पूर्ण चंद्र वृंदावन के कृष्ण के ही सब प्रकाश या विलास हैं, रूप प्रकाश या विलास रूप है उनके। तो ये कृष्ण जो सारे अवतारों के भी अवतारी हैं, और वो क्या है, परम सत्य है। परम सत्य माने सभी वस्तुएं उनके ऊपर निर्भर है। कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति ही, मेरे पूछे दोहरा सकते हैं, कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो हम मैप के बारे में बोल रहे थे, हमको कहां जाना है, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि मैं कहां हूं, तभी तो वहीं से तो जहां गंतव्य स्थान का टिकट निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए पहले चर्चा करते हैं कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, चित शक्ति से उनके सारे पार्षद, उनका सारा आध्यात्मिक धाम, उनकी सारी आध्यात्मिक लीला इत्यादि बने हुए हैं गोलोक वृंदावन में। फिर माया शक्ति जो हम सब बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, जो जड़ जगत जो सामने दिखता है वो माया शक्ति है, जड़ जगत, जड़ वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुओं के बीच में जो धसी हुई है वो है जीव शक्ति, माने हम सब। तो हम जब जड़ शक्ति का आश्रय लेते हैं तो जड़ शक्ति में धस जाते हैं, बद्ध जीव कहलाते हैं। और हम जब आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय पाते हैं, यानी चित्त शक्ति का आश्रय पाते हैं, माया का आश्रय पाते हैं, तो जड़ जगत में फंस जाते हैं, और राधा रानी का आश्रय पाते हैं तो आध्यात्मिक जगत में उन्नत हो जाते हैं। तो ये मनुष्य जन्म, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय विपत्ति जानो, जो जड़ जगत में सब कुछ दिख रहा है सब कुछ विपत्ति जानो, किसी को संपत्ति मत सोचो, सब विपत्ति है। विपत्ति जानते हैं, संकट कोई संकट के लिए प्रार्थना करता है क्या? नहीं। तो वैसे ही विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। जो शब्द रूप स्पर्श से जो भी आनंद लेने लायक इस जगत में दिखता है वो सब क्या है? विपत्ति है। विषय विपत्ति जानो, और ये संसार जो सामने दिख रहा है संसार स्वप्न मानो, ये सब सपना है। क्यों? अभी तो मैं कुछ दिन पहले स्कूल में पढ़ रहा था, अभी कहां गए वो दिन? कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं बचा, कुछ नहीं बचा उसका। बाद में मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, क्या हुआ उसका? हम सच सब सोच सकते हैं। हाल ही के अभी 25 साल हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी जस्ट चला गया, अभी जस्ट था अभी चला गया। फिर जो भी नौकरी उद्योग किया वो भी कैसे चला गया पता नहीं चला, ऐसे देखते देखते उड़ गया, जैसे कई कर्पूर है ना, रखता है हवा में, दूसरे दिन आता है तो और छोटा हो जाता है वो, देखा है आपने? और एक हफ्ते बाद आता है तो अरे कहाँ चला गया, डब्बी में नहीं रखा जाए, गायब हो गया। वैसे ही आज तक के जो जितना जीवन मैंने जिया कैसे गायब हो गया, सपने की तरह चला गया, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला 40 साल चले गए, पता नहीं चला 30 साल चले गए, पता नहीं चला 60 साल चले गए। तो वैसे संसार स्वप्न मानो। नरतनु भजनेर मूल, मनुष्य देह है ये केवल और केवल भजन के लिए मिला है। भजनेर मूल, केवल भजन के लिए मिला है। और भजन से क्या प्राप्त करना है? आध्यात्मिक शक्ति राधा रानी का आश्रय प्राप्त करना है, तभी तो जाके कृष्ण को की सेवा कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि हमको भगवान को दिखाओ, तो बोले अरे भगवान को देखने के लिए पहले तो उपनिषद तो पढ़ो। उपनिषद में क्या लिखा है? भक्तिरेव एनम नयति, भक्तिरेव एनम दर्शयति, भक्तिवशाय पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। आप को कृष्ण की तरफ या भगवान की तरफ भक्ति ही ले जा सकती है, और भक्ति ही दिखा सकती है भगवान को, और भक्ति के ही वश में कृष्ण है, और इसीलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। उस भक्ति का सार है प्रेम, और उस प्रेम का सार है राधा रानी। अब सोचिए, जो भक्ति कृष्ण को वश में कराती है और जीवों को कृष्ण को का दर्शन करवाती है, उस भक्ति का अंश, उस भक्ति का सार वो है प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम, और उस प्रेम का सार है राधा रानी। तो वो राधा रानी करती क्या है, ये भी मेरे साथ आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। लादिनी कराए कृष्णे आनंदास्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, लादिनी कराए कृष्ण आनंदास्वादन। चित्त शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, उसके और तीन विभाजन है, क्या है? संवित, संदिनी, संवित और लादिनी। अभी मैं दो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। संदिनी शक्ति क्या कराती है? रूप का गठन करती है, रूप का गठन स्थापन कराती। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी चीज के साथ आदान प्रदान होने के लिए उसका कुछ तो रूप, कुछ तो अस्तित्व तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो है संदिनी शक्ति का कार्य। फिर संवित शक्ति क्या करवाती है? उस वस्तु का संबंध क्या है वो प्रतीति करवाती है, उसकी उसका ज्ञान करवाती है। और लादिनी क्या है? वो संबंध से जो आनंद मिलता है उसका अनुभव करवाती है। यानी संदिनी शक्ति क्या कराती है? आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक रूपों को प्रकाशित करती है। यशोदा मैया है, सुबल है, श्रीदामा है, ललिता विशाखा है। और संवित शक्ति क्या करवाती है? उनका कृष्ण के साथ क्या संबंध है वो प्रकाशित करवाती है। तो यशोदा मैया का रूप, सुबल का रूप, वो प्रकाशित किससे होता है? संदिनी शक्ति से। उनका कृष्ण के साथ क्या संबंध है वो कौन प्रकाशित करता है? संवित शक्ति। माने यशोदा मैया जानती है कि मैं कृष्ण की मां हूं और ये मेरा बेटा है। सुबल जानते हैं कि कृष्ण मेरे मित्र हैं और मैं उनका मित्र हूं। या ललिता विशाखा जानती है कि कृष्ण मेरे कांत हैं, मैं उनकी कांता हूं। ये ज्ञान कौन करवाता है? संवित शक्ति। और लादिनी क्या करवाती है, ये संबंध से घटित सेवा से आनंद दिलवाती है सारे आध्यात्मिक जगत के वासियों को, अपने अपने रस के हिसाब से, अपने अपने भाव के हिसाब से। सुबल कृष्ण की सेवा करके जो सख्य रस का आनंद अनुभूति करता है वो किसका अंश है, लादिनी की शक्ति का कार्य है वो। या यशोदा मैया भी मातृत्व का जो अनुभव करती है और उससे आनंद जो मिलता है वो भी लादिनी शक्ति का कार्य है। और ललिता विशाखा आदि सारी गोपियां जो कृष्ण को कांत मानकर जो सेवा कर रही है उससे जो आनंद मिल रहा है वो भी किसका कार्य है, लादिनी शक्ति का कार्य है। अभी देखिए इसी को ये आध्यात्मिक जगत में कार्य जब भी होता है इन तीनों का ऐसा दृश्य दिखाई देता है। अभी वही भौतिक जगत में होता है तो क्या होता है, पहले तो ये हार्ड मास का शरीर संदिनी शक्ति भौतिक जगत में घटन करवा देती है, उसी का पैरल समझिए, ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम, जो सीधा है आध्यात्मिक जगत में वो बराबर क्या है, उल्टा है भौतिक जगत में। हाँ, तो हार्ड मास के प्राकृत शरीर निर्माण करवाती है, फिर संवित शक्ति क्या करवाती है कि भौतिक वस्तुओं से मेरा क्या संबंध है उसका ज्ञान करवाती है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे अमुक अमुक है, ये मेरे ये है, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, इत्यादि इत्यादि, ये मेरा बैंक बैलेंस है ये सब ज्ञान कौन करवाता है, संवित शक्ति। और उससे जो क्षणिक आनंद मिलता है वो लादिनी शक्ति का भौतिक जगत का कार्य है, यानी माया शक्ति का कार्य है, समझ में आ रहे तो उससे जो क्षणिक आनंद मिलता है, बहुत पैसे मिल गए अचानक एकदम आनंद हो गया, तो किसका, वो आध्यात्मिक आनंद नहीं है हाँ, अगर कृष्ण की सेवा करने के लिए मिलते हैं तो बात अलग है, और वैसा सोच रहे तो बात अलग है। तो हमारे भजन का उद्देश्य है कि ये जो संदिनी संवित और लादिनी जो हम माया के राज्य में उसका अनुभव कर रहे हैं, वही उसको छोड़कर हम राधा रानी के राज्य में उसका अनुभव करें, यही भजन है। भजन क्या है, माया का आश्रय छोड़कर राधा रानी का आश्रय लेना, यही भजन है, यही भक्ति है और इसी से आनंद है। हम में से हर एक जन आनंद के पीछे है, प्रत्येक जन, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक, सबको क्या चाहिए, आनंद ही चाहिए, लेकिन आनंद गलत जगह पे खोज रहे हैं हम वही है लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, राधा रानी कृष्ण को आनंद आस्वादन करवाती है, और लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, हमको आनंद दिलाती है कृष्ण के में हम नित्य दास हैं, ये हमको ज्ञान देकर, और उसका ये अनुकंपा है राधा रानी की, भक्त का पोषण कर रही है अनुकंपा। तो जीव गोस्वामी कहते हैं अनुकंपा क्या है, कृपा क्या है, क्या आप में से कोई इसकी व्याख्या करना चाहता है, कृपा आपके हिसाब से कृपा क्या है, भगवान की कृपा हो गई, कभी कभी हम कहते हैं ना भगवान की कृपा हो गई, अरे राधा रानी की कृपा मिल गई, अनुकंपा मिल गई, तो उसका शास्त्रीय अर्थ क्या है, कृपा का डिक्शनरी अर्थ क्या है, यानी वैष्णव डिक्शनरी में क्या अर्थ है कृपा का, ये गूगल करने से नहीं मिलेगा कोई बता सकते, कृपा या अनुकंपा, सेवा, बराबर, बिल्कुल सही है, किन्होंने कहा, आपने कहा, हाँ, तो इसको मैं, आप सभी थोड़ा बताते जाइए, देखते हम जीव गोस्वामी जी के फाइनल डेफिनेशन तक पहुंचेंगे कि नहीं, सबका मिलाकर, ठीक है, सेवा। और कोई कहना चाहते हैं, अच्छा बहुत सही है, अच्छा है, पात्रता के बिना ही आशीर्वाद मिलना, ये कृपा है कह रहे हैं प्रभु जी, बहुत बढ़िया। और आपके हिसाब से क्या है कृपा, क्या है, लगता है सबने सब किसी किसी ना किसी तरीके से जीव गोस्वामी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके व्याख्या के अंश अंश मिल रहे हैं हमको। ऊपर से जो आती है उसको कृपा कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई कहना चाहता है, सेवा करने की खुशी का जो अनुभव होता है वो कृपा है, ठीक है, बिल्कुल। और कोई कुछ बताना चाहता है, आपके हिसाब से कृपा या अनुकंपा क्या है, कृपा तो हम चाहते कि नहीं चाहते पहले ये बताइए, चाहते ठीक है, फिर क्या चाहते हो हमको मालूम होना चाहिए ना। कृपा चाहता हूं, तो राधा रानी ने पूछा कृपा चाहते हो मतलब क्या चाहते हो, तो हम क्या कहेंगे वो हमको पता होना चाहिए, तो इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे थोड़ा सा। आनंद, ठीक है, कृपा माने हमको आनंद मिलना, आध्यात्मिक आनंद उसकी प्राप्ति होना, ठीक है। हाँ, कृष्ण, कृष्ण के निकट जाना, ठीक है ठीक है, ये कृपा, कृष्ण के निकट जाना, किसी भी प्रकार से हम कृष्ण के निकट पहुंचेंगे तो वो कृपा होगी, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मैं जीव गोस्वामी क्या कहते हैं बताता हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। हाँ, भौतिक जगत के प्रति अनासक्त होकर राधा कृष्ण के प्रति एकांत आसक्ति उत्पन्न होना, यही कृपा है। तो सबने बिल्कुल सही कहा है, 100% सही है, हम बस उसको जोड़कर एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो जीव गोस्वामी कह रहे हैं। कह रहे हैं आपने जो सब कुछ कहा सब इसी में आता है, जो जीव गोस्वामी कह रहे हैं वह संदर्भों में। अनुकंपा च पूर्णे अपि स्वस्मिन् सेवकादिषु सेवादि अभिलाषम उत्पाद्य सेवादि सौभाग्य संपादिका भगवतश्चित्त आर्द्रतामयि तदुपकारेच्छा। इसको इसका व्याख्या करते हैं। अनुकंपा या कृपा क्या है? पूर्णे अपि स्वस्मिन्, भगवान तो पूर्ण है फिर भी जीवों के हृदय में अपनी सेवा करने की इच्छा जागृत करना और उस इच्छा को साक्षात घटन करने के लिए सुविधा उत्पन्न करके देना, यही कृपा है। एक तो हमारे हृदय में कृष्ण अपनी सेवा करने की इच्छा उत्पन्न करना और उस सेवा कर संपन्न करने के लिए सुविधा उत्पन्न करके देना, यही कृपा है। उसमें सब कुछ आ गया, सेवा प्रभु ने कहा, निकट जाना कहा, ऊपर से आना, कृष्ण ही कर रहे हैं तो ऊपर से आना, पात्रता बिना मिलना, क्योंकि जीव की तो क्या पात्रता है कृष्ण ही आपने पूर्ण होकर भी उत्पन्न कर रहे हैं ये, और अपने प्रति आसक्ति उत्पन्न करवा रहे, यानी भौतिक जगत के प्रति निराशक्ति, तो यही क्या है? अनुकंपा है, यही कृपा है। तो हम भगवान के सामने कृपा मांग रहे हैं, मतलब क्या मांग रहे हैं? सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो और उसकी सुविधा उत्पन्न हो, वो पूर्ण करने की, सेवा पूर्ण करने के लिए सुविधा उत्पन्न हो, यही कृपा है, यही अनुकंपा है, और कोई उसका उसकी व्याख्या नहीं है। तो ये राधा रानी की कृपा है कि वो हमारे हृदय में, हम आए हैं उनके बारे में सुनने के लिए, उनका दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न होना। कभी भी आप सोचिए हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई आपकी कि अरे जाके दर्शन कर लूं, तो ये क्या है? क्या है ये? कृपा है, ये अनुकंपा है कृष्ण की, ये हृदय में इच्छा ही उत्पन्न होना कि जाके मैं कृष्ण का दर्शन कर लूं, ये कृपा है। अरे मैं कृष्ण का नाम सुन लूं या जप कर लूं या कृष्ण के लीला के बारे में थोड़ा सुन लूं, ये क्या है? इच्छा जागृत होना ही कृपा है और कोई अर्थ नहीं है कृपा का। तो ये जो राधा रानी है उनका स्वरूप बता रहे हैं, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्व गुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। कृष्ण के सारी कांताओं की शिरोमणि है राधा रानी, महाभाव स्वरूपा है। महाभाव माने क्या? जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको मान लो दूध मान लो, उसको गाढ़ा किया जाए तो पहले क्या बनता है? हाँ, रबड़ी बन जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये जो बीच के जो सारे भूमिकाएं हैं, अब रुच जो भी प्रणय स्नेह इत्यादि, वो सब रबड़ी के तरह है, और रबड़ी को और गाढ़ा किया जाए तो क्या बनेगा? एकदम अंत में दूध को गाढ़ा करते जाए बिना जलाए वरना कोयला बन जाएगा तो क्या बनेगा अंत में? क्या बनेगा? मावा या पेड़ा बनेगा। हाँ, तो वो पेड़ा ही महाभाव है, समझ लीजिए, उससे गाढ़ा और कुछ नहीं हो सकता प्रेम अगर दूध है तो पेड़ा क्या है? महाभाव है, और उसी का स्वरूप क्या है? राधा रानी है। राधा रानी का स्वरूप ही महाभाव है, कृष्ण प्रेम स्वरूप, कृष्ण महाभाव स्वरूप सदैव उनका चित्त इंद्रिय वाचा किसमें लगी रहती है? कृष्ण को कैसे सुख मिले, कृष्ण को कैसे सुख मिले। राधा रानी की कृपा हम पर होती है तो हमारे हृदय में क्या आता है? कृष्ण को कैसे सुख मिले। अभी राधा रानी सुख का महासागर दे सकती है कृष्ण को, लेकिन उनकी कृपा से कम एक बिंदु तो दे सकते हैं कृष्ण को। उनकी कृपा से एक बिंदु तो हम कृष्ण को दे ही सकते हैं। तो बोले जैसे कृष्ण सारे अवतारों के अवतारी है, श्री रामचंद्र, श्री नारायण इत्यादि सारे, श्री वराहदेव, तो राधा रानी सारे जो शक्तियां हैं उनकी अंशिनी है। माने कृष्ण जब रामचंद्र में विस्तारित होते हैं तो राधा रानी कौन बन जाती है? सीता देवी बन जाती है, विस्तारित होती है सीता देवी में। कृष्ण जब द्वारका कृष्ण में विस्तारित होते हैं तो राधा रानी किस में विस्तारित होती है? रुक्मिणी सत्यभामा आदि सारी महिषियों में विस्तारित होती है। कृष्ण जब ही वराहदेव में विस्तारित होते हैं तो राधा रानी किसके रूप में विस्तारित होती है? भूदेवी, भूमि देवी के रूप में विस्तारित होती है। कृष्ण जब भगवान नारायण में विस्तारित होते हैं तो राधा रानी किस में विस्तारित होती है? लक्ष्मी देवी में विस्तारित होती है। तो ये है महती राधा रानी की। तो बहुत बार लोग राधा कृष्ण के बारे में कैसे समझते हैं? बाहर के लोग टीवी के सीरियल देख के समझते हैं, माने मनोरंजन से समझते हैं। तो हमने शुरू में क्या कहा, मनोरंजन से क्या होगा, हमको क्या दिखेगा? राधा कृष्ण दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, अपने ही मन पटल के ऊपर अपने ही मन के विचार दिखेंगे। क्योंकि जो सीरियल बनाने वाले हैं वो थोड़ी ना शास्त्र के अनुसार लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी को एक बार एक ड्रामा करने वाले, हमारे ड्रामा का ग्रुप था, तो जो कृष्ण के ऊपर विविध जैसे जन्म लीला है, सुदामा लीला है, तो प्रभुपाद जी को आकर उन्होंने पूछा जो ड्रामा करने वाले एक्टर्स हैं उनके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, कि कैसे वो किसी ड्रामा स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, या क्या उनकी पात्रता होनी चाहिए जो कृष्ण लीला का नाट्य कर रहे हैं, जो भी है, ड्रामा बोलो, आजकल सीरियल बोलो, जो भी हो, उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने केवल एक चीज कही, क्या ये कोई गेस कर सकता है क्या कहा होगा प्रभुपाद ने? हाँ, यस, एक्टर सभी भक्त होने चाहिए, सभी कंस से लेकर सभी भक्त होने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि केवल सुदामा भक्त हो और कृष्ण भक्त हो, जो कंस का एक्टिंग कर रहा है वो भी भक्त होना चाहिए, शिशुपाल का एक्टिंग कर रहा है वो भी भक्त होना चाहिए। ड्रामा में सच में नहीं, सच में वो कंस शिशुपाल नहीं होना चाहिए। ड्रामा में एक्टिंग करने वाले सारे पात्र कृष्ण के भक्त होने चाहिए, साधक होने चाहिए। माने जैसे हम कल सुंदर ड्रामा देखा रात को, सभी अपने इंग्लिश मीडियम के भक्तों ने, साधकों ने ड्रामा प्रस्तुत किया, तो उससे ज्यादा समझ में आएगी कृष्ण लीला, सच में समझ में आएगी। सीरियल देख के नहीं समझ में आएगी राधा कृष्ण के ऊपर, जो टीवी सीरियल जो कमर्शियल लोग बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं, शास्त्र का कुछ लेना देना नहीं, जो भी अपने मन में आया डाल दो, भक्ति से कुछ लेना देना नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, उससे सब विपरीत समझ में आएगा। बाहर लोग पूछते हैं कि अरे ये राधा कृष्ण पर की लीला क्या है, ये क्या साधारण जगत में जैसे कोई परकीय भाव का कोई एक युवक युवती के बीच में जैसी चेष्टाएं होती है, क्या वो ये ऐसी चेष्टा है? तो बोल रहे नहीं, ये मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति मान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्रेर प्रमाण। राधा रानी पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। जैसे सूर्य और सूर्य की उष्णता या प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चाहे उनमें विवाह हो ना हो, सूर्य और सूर्य का प्रकाश तो एक दूसरे के ही हैं। समझ में आ रहा है? ये सूर्य का सूर्य के प्रकाश के साथ विवाह हो ना हो, सूर्य का प्रकाश तो सूर्य का ही है और किसी का नहीं है, और सूर्य भी सूर्य प्रकाश का ही है और किसी का नहीं है। तो ये समझना आवश्यक है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, यानी शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। ऐसा मान लो कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, माने अपने ही छवियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, स्वरूप शक्तियों के साथ। कृष्ण अपने अपनी ही छायाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। कोई बालक अपनी छाया के साथ खेलता है, छाया परछाई, तो कोई किसी को आक्षेप है उससे? अरे भाई, बालक है और उसकी छाया है, तुमको क्या है? तो वैसे कृष्ण है, कृष्ण की स्वरूप शक्तियां हैं, राधा रानी सारी और सारी गोपियां। तो मान लो कृष्ण कृष्ण के साथ ही लीला कर रहे हैं, कृष्ण शक्ति के रूप में, राधा रानी, ललिता, विशाखा, ये सभी कौन है? कृष्ण ही तो है, कृष्ण की स्वरूप शक्तियां हैं। तो कृष्ण कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं, किसी को क्या तकलीफ होनी है उसमें? लेकिन भौतिक जगत में एक जीव दूसरे के जीव के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने के लिए शास्त्र से बाधित है। शास्त्र के निर्बंध के बिना अगर वो संबंध रखता है किसी दूसरे जीव के साथ, तो वो क्या हो गया? पशु के स्तर पर गिर जाता है वो। लेकिन कृष्ण के लिए वो नियम लागू नहीं है। जैसे आप मान लो गाड़ी चला रहे हो, जो भी टू व्हीलर फोर व्हीलर चला रहे हो, लाल बत्ती पे आपको रुकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस आकर कुछ दंड करेगा आपको। लेकिन आप कहोगे अरे मुझे रुकना पड़ता है ट्रैफिक पुलिस, मतलब जब भी लाल बत्ती होती है तभी, तो जब भी लाल बत्ती होगी ऊपर जो हवाई जहाज चल रहा है वो भी रुकना चाहिए, ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो मूर्खता है भाई। हवाई जहाज तुम्हारे रास्ते के ट्रैफिक के सिग्नल के लिए क्यों रुकेगा? वो तो अपने नियम से चलता है। तो ये हम इससे जानते हैं कि राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप, एक स्वरूप होते हुए ही होते हुए भी शक्तिमान और शक्ति के रूप में दो स्वरूप धारण करते हैं। और ये राधा कृष्ण की लीला कलयुग में खासकर बिना चैतन्य महाप्रभु के समझ में आने वाले नहीं किसी को भी। इसलिए हमारे पास राधा वृंदावन बिहारी के साथ कौन है? गौरांग महाप्रभु हैं। गौरांग महाप्रभु के बिना राधा कृष्ण की लीला समझना अत्यंत कठिन है। प्रेम भक्ति शिखाए थे आपने अवतारी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा रानी का भाव लेकर अवतरित हुए ये बताने के लिए कि राधा रानी कौन है। यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के मोने धरी ताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो के। तो राधा रानी के महत्ता अगर समझनी है तो गौरांग महाप्रभु की शिक्षाएं समझनी पड़ेगी। इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? चैतन्य चरितामृत पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमको बताते हैं अपने ही स्वरूप का आस्वादन करने के लिए वो सोचे कि कृष्ण होकर कृष्ण के रूप का आस्वादन मैं नहीं कर सकता, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? राधा रानी का भाव अंगीकार करना पड़ेगा। जो जिसका धन है उसी के पास से वो लेना पड़ेगा, थोड़ी ना अपने मन से जादू से तो धन क्रिएट नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। तो राधा रानी का धन है तो राधा रानी का भाव अंगीकार करना पड़ेगा। ना जानी राधार प्रेम अच्छे कत बल, कृष्ण सोच रहे हैं ये बले हमारे करे सर्वदा विह्वल। तो कह रहे हैं कि राधा रानी के प्रेम में कितना बल है कि सदैव हमको विह्वल कर रहे हैं। कृष्ण वो हैं जो जगत को आकृष्ट करते हैं, और वो विह्वल किस लिए है? राधा रानी के प्रेम के लिए। कृष्ण कोई स्त्रैण नहीं है, स्त्री लंपट नहीं है, वो केवल जिनकी आध्यात्मिक देह है उन्हीं के साथ नृत्य करते हैं। साधारण जगत की उर्वशी रंभा के साथ भी नृत्य नहीं करते कृष्ण। तो फिर जो भौतिक जगत की है कोई, उसके साथ क्यों नृत्य करेंगे कोई? जब ही साधक वैष्णव वैष्णवी जो है वो आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं भक्ति करते करते, तो उन्हीं को सखा या सखी के रूप में स्वीकार करते हैं कृष्ण, ऐरे गहरे को नहीं करते हैं। कोई रास्ते पे मिल गया, चलो इसको सखी बना लिया, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है हमारे कृष्ण, स्त्री लंपट नहीं है। तो जिनको राधा रानी की कृपा है उनको भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो श्लोक मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप। तो ये एक श्लोक में राधा रानी की महती वर्णन की गई है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। देवी, अभी हर एक शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। राधा रानी कौन है? देवी यानी परम सुंदरी, दिव्य आध्यात्मिक सौंदर्य है उनका। या दूसरा अर्थ है कृष्ण पूजा क्रीड़ा की आश्रय है, कृष्ण पूजा की आश्रय है ये। अपने सारे अंग प्रत्यंग से कृष्ण की पूजा करती है वो, इसलिए नाम है राधा, आराधना करती है कृष्ण की। कृष्णमयी माने कृष्ण जिनके भीतर और बाहर हैं। अंदर सदैव किसका चिंतन होता है? राधा रानी का, कृष्ण का चिंतन होता है कि कृष्ण को आज कैसे सुख प्रदान करूं मैं। और स्व सुख वासना का लेश भी नहीं है, अपने सुख के बारे में नहीं सोचती हैं गोपियां, और उसमें सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी। जहां हाँ, कृष्णमयी कृष्ण जहार भीतरे अंतरे, भीतरे बाहिरे, जिनके अंदर बाहर भी जहां पे नजर गिरी कृष्ण की ही स्फूर्ति होती है उनको। एक बार वृंदावन यात्रा में मैं गया था, और उस समय ये 2008 की बात है, और ये भांडीरवन बेस के भक्त उनके साथ जुड़ गया था मैं। तो भांडीरवन बेस के थे इसलिए भांडीरवन देखने के लिए चले गए थे वो सब, और साथ में गौर गोपाल प्रभु थे, बेस के इंचार्ज थे तभी। वो जमाने की बात थी जब गौर गोपाल प्रभु इजीली अवेलेबल थे। तो उनके साथ भांडीरवन जा रहे थे, तो बीच रास्ते में मैंने प्रभु जी को कहा कि प्रभु जी जब ये भांडीरवन नाम आपने कहा तो मुझे गोविंद दास के भांडीरवन डोसा की याद आ गई। अपने गोविंद दास में अगर आप गए होंगे तो वहां पे अलग अलग डोसा के नाम भांडीरवन, मधुवन, तालवन ऐसे नाम रखे हैं। तो उसकी याद, उसका स्मरण मुझे हुआ। तो गौर गोपाल प्रभु कहे, हे भगवान, हमने उस डोसा का नाम इसलिए भांडीरवन रखा ताकि डोसा खाते समय तुमको असली भांडीरवन का स्मरण हो, और तुम अभी असली भांडीरवन में हो और तुमको डोसा की याद आ रही है। तो उद्दीपन किसका होता है? जो मेरे मन में चल रहा है उसी का उद्दीपन होता है। जो मेरे मन में चल रहा है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड इज दी रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस, यानी बाह्य जगत हमारे चेतना का ही दर्पण है, हमको वही दिखेगा जो हम देखना चाहते हैं जगत में। तो वैसे राधा रानी को वही दिखता है जो वो देखना चाहती है। क्या देखना चाहती है? वो कृष्ण को देखना चाहती है। तो तमाल का वृक्ष देखा, कृष्ण का स्मरण हो गया। मयूर का कंठ देखा, कृष्ण का स्मरण हुआ। यमुना को देखा, कृष्ण का स्मरण हुआ, यमुना तो कृष्ण वर्ण की है। बादल को देखा, कृष्ण का स्मरण हुआ। काले वस्त्र को देखा तो भी कृष्ण का स्मरण हुआ। जैसे महाप्रभु अपने उदाहरण से बता रहे हैं, नदी, कोई भी नदी देखी तो किसका स्मरण हुआ? यमुना का स्मरण हुआ। कोई भी पर्वत देखा, किसका स्मरण हुआ? गिरिराज गोवर्धन का स्मरण हुआ। कोई भी वन देखा, किसका स्मरण हुआ? वृंदावन का स्मरण हुआ। तो ये कृष्णमयी का अर्थ है, हृदय में भी कृष्ण, बाहर जहां नजर गिरे, जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, वहां पे भी कृष्ण की स्फूर्ति। तो श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि वही राधा रानी का गुण भी हमारे सारे आचार्यों में है, कि वे भी कुछ कुछ देखते हैं। अमेरिका में किसी सी शोर पे गए थे और बहुत जोर जोर से जो क्या कहते तरंगे जो थी उसका आवाज हो रहा था। हा? लाटा, तरंगे, लहरें जो थी वो उसका आवाज हो रहा था। तो प्रभुपाद कहें, यह आवाज सुनकर गोपियों के नूपुरों की छनछनाहट स्मरण हो रही है। तो मैं अपने लिए सोच सकता हूँ ये सुनकर मुझे क्या क्या शायद से फिल्म का म्यूजिक स्मरण हो। तो हमको यही कॉन्शियसनेस हमको बदलना है कि अभी जो सदैव भौतिक स्मृतियों की दुष्ट स्मृतियों का आक्रमण होता है तो उसको हटाकर आध्यात्मिक दिव्य स्मृतियों का आक्रमण हृदय पर हो। आक्रमण ये शब्द बहुत अच्छा है, जीव गोस्वामी कहते हैं राधा माधव योर माधुरी भीर अभितस चित्तम ममाक्रम्यताम। मेरे चित्त पे आक्रमण हो, माया का नहीं, राधा कृष्ण की माधुरी का आक्रमण हो। कह रहे हैं राधिका पर देवता, राधिका माने कृष्ण वांछा की पूर्ति करने वाली। कभी आपने सोचा है ऐसा प्रेम कृष्ण को क्या चाहिए? एक क्लास में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे हैं, ये गौर से सुनिए, कृष्ण को क्या रुचि है, उनको क्या पसंद है, वो कृष्ण जानने से पहले राधा रानी जान लेती है। कृष्ण के मन में विचार आने से पहले कि ये मुझे चाहिए, उससे पहले ही राधा रानी जान लेती है। और कृष्ण को क्या पसंद है कृष्ण से ज्यादा राधा रानी जानती है। ये कैसे संभव है? ऐसे कभी हो सकता है? हमारे मन में क्या मुझे अच्छा लगता है मुझसे ज्यादा कोई और जाने, ये कैसे हो सकता है? केवल आध्यात्मिक जगत में यह संभव है कि कृष्ण के मन में कोई विचार किसी वस्तु का आनंद लेने की इच्छा उत्पन्न होने से पहले ही राधा रानी को समझ में आता है कि ये कृष्ण को चाहिए। उसी प्रकार से वो पकवान बनाती है, उसी प्रकार से वो नृत्य करती है, उसी राधा रानी आंख नीचे से ऊपर करती है वो भी कृष्ण के आनंद के लिए, पलक झपकती है वो भी कृष्ण के आनंद के लिए। तो इतना हर चेष्टा, हर विचार, हर योजना कृष्ण के आनंद के लिए। परदेवता, परदेवता है मैंने सर्व पूज्या, जहार सौभाग्यादि गुण वांछे सत्यभामा। सत्यभामा देवी सोचती है अरे राधा रानी जैसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। जहां ढाई कला विला शिखे व्रज रामा, व्रज की सारी गोपियां 64 कलाएं जो है सीखती किससे है? राधा रानी से सीखते हैं। कृष्ण के लिए गाना कैसे है, कृष्ण के लिए नृत्य कैसे करना है, कृष्ण के लिए खाना कैसे पकाना है, सब राधा रानी से सीखती है। इसलिए बोलते हैं ना राधा रानी किचन इंचार्ज है। किचन इंचार्ज नहीं, वो सबकी इंचार्ज है, वो डांसिंग भी इंचार्ज है, सब चीजों की इंचार्ज है। तो जहारा सौभाग्यदि गुण वांछे सत्यभामा, जहा ठाई कला विला शिखे व्रज रामा, जहार सौंदर्यादि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती। लक्ष्मी और पार्वती सोचती है कि अरे राधा रानी का कितना कितना सौंदर्य है, काश हमको इसका एक अंश मात्र मिल जाता तो हम हमारे पतियों को संतुष्ट करती उससे। और जहार पतिव्रता गुण वांछे अरुंधति, इस जगत की बहुत सारी पतिव्रता स्त्रियों में अरुंधति एक अनन्य है, तो उनमें वो भी सोचती कि राधा रानी की जैसी पतिव्रता हम में आ जाए, कृष्ण के प्रति जैसे उनका एक व्रत है सदैव उनके बारे में चिंतन करती है वैसा हम में भी आ जाए। फिर सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोहिनी परा। सर्व लक्ष्मी माने क्या? सर्व लक्ष्मियों की मूल स्वरूप है राधा रानी, कृष्ण के षडैश्वर्य की अधिष्ठात्री है। माने सोचिए हम बोलते कि कृष्ण षडैश्वर्य पूर्ण है, छह ऐश्वर्य कौन है, कौन से है कृष्ण के? अनंत क्या क्या है? ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य शैव षण्णाम भग इतिंगना। अनंत जो सौंदर्य है कृष्ण का वो उसकी भी अधिष्ठात्री राधा रानी है, अनंत जो उनकी शक्ति है उसकी भी अधिष्ठात्री राधा रानी है। तो अनंत जो उनका औदार्य है कृष्ण का उसकी भी अधिष्ठात्री राधा रानी है, इसलिए सर्व लक्ष्मी मई है। सर्व कांति यानी सौंदर्य, सर्व सौंदर्य की स्रोत हैं और कृष्ण की सारी इच्छाएं राधा रानी में ही रहती हैं। सम्मोहिनी परा, जगत मोहन कृष्ण की भी मोहिनी है इसलिए सम्मोहिनी। तो ये श्लोक हमारे पीछे आप दोहरा सकते हैं वापस। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। बोलते हैं जैसे राधा रानी कृष्ण की प्रिय है, विष्णु याने यहां पे कृष्ण ही है, विष्णु याने राधा रानी के चित्त को व्यापने वाले, विष्णु का अर्थ है व्यापने वाला। तो साधारण रूप में विष्णु मतलब जगत को व्यापने वाला, लेकिन यहां पे कृष्ण को विष्णु नाम दिया है। क्यों? राधा रानी के मन को व्यापते हैं इसलिए विष्णु है। तस्या कुंडम प्रियम तथा, और राधा रानी का कुंड भी राधा रानी की तरह ही प्रिय है, और सारी गोपियों में वही एक है जो अत्यंत वल्लभा है कृष्ण की। और हम कौन है, हम क्या? एक जगह पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जीव राधा रानी का अंश है, कृष्ण का अंश है कह रहे हैं बराबर है, लेकिन शक्ति का अंश है हम, शक्तिमान के अंश नहीं है हम, शक्ति के अंश है, क्योंकि हम भी तो शक्ति है ना। अतः उसका कर्तव्य है कि राधा रानी की सेवा करना और उनकी सेवा से ही कृष्ण की सेवा करना, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं एक लेक्चर में। तो ये केक क्यों रखा हुआ है इधर? केक रखने का क्या मतलब है? राधा रानी का आविर्भाव इसलिए उनके लिए केक है, ठीक है बोल सकते हैं। तो केक का अर्थ है, ये केक एक सामान्य भाषा में समझाया जाए तो कृष्ण भोक्ता है और ये जो केक है वो राधा रानी है, वो केक का आनंद लेने वाले भोक्ता कृष्ण है, ये केक राधा रानी है, और हम सब कौन है? वो केक के ऊपर जो एक कलर दिख रहे हैं स्प्रिंकल कलर के कण, वो सब हम हैं। आई बात समझ में? इसका क्या मतलब है? इन कणों को देखिए आप, कुछ काले, कुछ नीले रंग के हैं, कुछ कुछ लाल रंग के हैं, कुछ कुछ हरे रंग के हैं, पीले रंग के हैं, वो अगर केक के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो मिट्टी में मिल जाएंगे, वो अलग से आस्वादित नहीं हो सकते वो कृष्ण से। केक से अगर वो नहीं जुड़े हुए हैं तो कहाँ पे कहीं पड़े रहेंगे, कहीं जमीन पे गिर जाएंगे और उसके ऊपर पशु चल के जाएंगे। लेकिन वही अगर केक के ऊपर जुड़े हुए हैं, अपने से उस उनकी कुछ क्षमता नहीं है कृष्ण को आनंद देने की, लेकिन केक के ऊपर हैं तो केक का आनंद, केक का आस्वादन का आनंद कृष्ण का वो बढ़ा रहे। तो वैसे ही हम कुछ करने लायक नहीं है, भौतिक जगत में भी नहीं और आध्यात्मिक जगत में भी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर राधा रानी की शक्ति से जुड़े तो कृष्ण के लिए कुछ आनंद हम प्रदान कर सकते हैं। तो ये इसका अर्थ है ये प्रभुपाद जी। अच्छा, लेक्चर में केक का एनालॉजी नहीं दिया था उन्होंने, हमने बस उसको अच्छे से समझाने के लिए डाला है। तो ठीक है, जय श्री राधा बन बिहारी की जय। तो अभी हम कुछ गिनी चुनी लीलाएं हम देखेंगे। इतना देर तक हमने राधा रानी की महत्ता को समझा, अभी थोड़ी हम लीला को समझेंगे। तो राधा रानी का आविर्भाव भी कृष्ण के आविर्भाव की तरह ही होता है, कोई भौतिक रूप से नहीं होता। तो राधा रानी के तीन आविर्भाव की तीन कथाएं हैं जो अलग अलग कल्पों में हुआ था। एक आविर्भाव में वृषभानु महाराज हल जोत रहे थे, यानी खेत जोत रहे थे हल से, और हल के अग्रभाग में एक सुवर्ण की पेटिका मिली और पेटिका में एक कन्या मिली जो थी श्री राधा, ऐसा प्रभुपाद जी एक कथा में बताए। तो कुछ भक्त कहने लगे, अरे ऐसी तो कौन मिली थी, ऐसी तो सीता देवी मिली थी, शायद से प्रभुपाद जी ने कंफ्यूज कर दिया सीता देवी को राधा रानी के साथ इसलिए ऐसा बताया। बाद में भक्तों को पता चला कि पद्म पुराण में यह भी लिखा हुआ है, इस तरीके से राधा रानी मिली वृषभानु महाराज को, यह भी लिखा हुआ है। मतलब प्रभुपाद जो बोल रहे सब सही है, ऐसा नहीं है कि कल्प भेद में इस तरीके से भी मिली थी वृषभानु महाराज को। और फिर एक कल्प भेद में वृषभानु महाराज और कीर्तिदत्त देवी काम्यवन में जाकर शिव जी की उपासना की है, कामेश्वर महादेव की, और प्रार्थना की कि हमको एक अद्भुत कन्या की प्राप्ति हो। तो कामेश्वर महादेव वो कुछ कीर्तिदा और वृषभानु से बड़े नहीं है। कामेश्वर महादेव तो एक साधारण व्रजवासी की भी रज चाहते हैं। तो यहां पे तो व्रज के राजा रानी है कौन? वृषभानु और कीर्तिदा। जैसे नंदा महाराज और यशोदा राजा रानी है ना व्रज के, वैसे वृषभानु और कीर्तिदा भी राजा रानी है। वैसे तो नंद महाराज को अधिकारी के रूप में वृषभानु महाराज भी देखते हैं राजा के रूप में, लेकिन वो स्वयं उनकी संपत्ति नंद महाराज से भी अधिक है। क्यों? कौन सी संपत्ति? तो कह रहे हैं कि नंद महाराज तो बहुत धन्य है क्योंकि कृष्ण को आविर्भूत किया, लेकिन वृषभानु महाराज और भी ज्यादा धन्य है क्योंकि कृष्ण प्रेम को साक्षात आविर्भूत किया उन्होंने, राधा रानी को आविर्भूत किया। तो वो संपत्ति उन अधिक और भी नंद महाराज की संपत्ति से भी अधिक है। तो कामेश्वर महादेव की शक्ति नहीं है कि वृषभानु महाराज को वर दे दे। लेकिन लीला में कामेश्वर महादेव ये एक भूमिका ले रहे कि कभी कभी आप देखते हैं कि किसी इसमें नाट्य में या किसी फिल्म में कोई बहुत बड़ा हीरो है, लेकिन वो ड्रामा में या वो फिल्म में कोई एक साधारण एक्टर है जो उसका बॉस बन जाता है या जो भी बन जाता है। लेकिन फिर भी जो एक्टर है, जो ग्रेट एक्टर है, वो ग्रेट एक्टर ही है चाहे जो भी रोल करे। तो यहाँ पे नरलीला में वृषभानु महाराज और कीर्तिदा समझते हैं कि अरे हम तो बहुत ही साधारण हैं। तो कामेश्वर महादेव की प्रार्थना करते कि हमको एक कन्या दिला दो। तो कामेश्वर महादेव स्वयं को धन्य समझते हैं कि अरे वृषभानु महाराज की कुछ सेवा करने का कुछ अवसर मिल गया हमको। तो वो आशीर्वाद देते हैं, हाँ आपको एक कन्या प्राप्त हो जाएगी। और फिर कीर्तिदा के गर्भ से जन्म लेती है राधा रानी वो लीला में। जैसे कृष्ण यशोदा के गर्भ से जन्म लेते हैं ना, वैसे राधा रानी कीर्तिदा के गर्भ से जन्म लेती है एक कल्प में, एक लीला में। फिर और एक आविर्भाव की लीला है जिसमें यमुना में गायत्री करने के लिए वृषभानु महाराज खड़े थे और उनको एक सुवर्ण कमल, सुवर्ण रंग का एक कमल बहते हुए आया यमुना में, और उसमें जो एक कन्या प्राप्त हुई वो कौन है? श्री राधिका। तो ये तीन आविर्भाव की कथाएं हैं और तीनों सही है। ठीक है, अभी बहुत सारी लीलाएं हैं, उसमें से एक लीला में सिलेक्ट करने वाला हूं। एक लीला राधा रानी की जो कृष्ण के प्राकट्य के समय हुई, और एक लीला और अभी नित्य चल रही है, और एक लीला जो हमारे आचार्यों के साथ हुई। तो ये दो लीलाएं हम देखेंगे। तो उसमें से मैं ठीक है, ये पहली लीला ही बताए थे, घेवर वन की लीला। घेवर खाया है आपने? आप में से कितने घेवर खाया? हाथ ऊपर करो। बाकी लोगों ने घेवर नहीं खाया कभी? खाया है ना फिर। तो इसी, ये जो चल रहा है ना रक्षाबंधन से लेकर अभी तक, ये जो समय है अब वृंदावन में घेवर के बहुत सारे आपको शॉप्स मिलेंगे, जो दुकान है जिसमें घेवर बन रहा है। क्योंकि इसी समय ये जो घेवर वन की लीला भी इसी समय हुई, जिस समय सारी जो कन्याएं हैं, विवाहित कन्याएं हैं, यावट से अपने मायके चली जाते हैं। मतलब कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? यावट से अपने, यावट उनका ससुराल है, वहां से मायके चली जाती है। कहाँ चली जाती है? हाँ, बरसाना, बरसाना चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। तो वहां पर ये जो वर्षा ऋतु बिताकर बाद में उनकी विदाई होती है वापस तथाकथित आप ससुराल में, तो पहले ये चीज देखिए कि ये जो विवाह है जो गोपियों का तथाकथित पतियों के साथ जो विवाह हुआ, वो विवाह योग माया द्वारा रचित है। माने एक स्वाप्निक विवाह की तरह ही है, एक नाममात्र विवाह है। असल में राधा रानी और सारी गोपियां जो हैं उनके जो रूप हैं उसकी जो छाया है उसको भी उनके पति नहीं छूते कभी शाश्वत काल के लिए। राधा रानी और गोपियों के जो छाया रूप हैं, जब राधा रानी कृष्ण को मिलने के लिए जाती है, एक छाया रूप उनके, एक जो माया रूप जो घर पे स्थित है उसको भी उनके पति नहीं छूते, मतलब उनकी छाया को भी वो नहीं छूते उनके पति, और केवल उनको देख पाते हैं, उनकी छाया को देख पाते हैं, उनको भी नहीं देख पाते उनको केवल कृष्ण ही देखते हैं। तो ये समझिए कितनी पवित्रता इसमें है। केवल उनका सारा तन मन धन देह प्राण मन सब कुछ कृष्ण के ही संतुष्टि के लिए है, और उनके जो तथाकथित पति हैं उनको उनके छाया को भी नहीं छूते वो वो केवल योग माया ने निर्माण किए हुए कुछ व्यक्तिमत्व है जो किस कारण के लिए उनका तथाकथित विवाह घटन करवा दिया पौर्णमासी ने, ताकि गोपियों को कृष्ण के साथ जो मिलन का जो आनंद है उसमें और भी रुचि बढ़े। तीन कारणों से, एक बाधा, जब भी किसी चीज, आप सोचिए आपको कौन सा मैच, आपने पता नहीं अगर क्रिकेट देखा हो या ना टेनिस या क्रिकेट देखा हो, कौन सा मैच अच्छा लगता है, एक टीम बहुत आराम से जीत गई या लास्ट बॉल तक पता नहीं चला कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन सी मैच को अधिक आप आस्वादन कर पाते हो या किया हो, जिसमें स्पर्धा हो, कुछ तो बहुत चैलेंज हो, तो वो स्मरण में रहता है, अरे हाँ वो 1999 का वो मैच जो भी है तो मेरा उद्दीपन देखिए क्या है तो वही याद रहता है। तो इसी कारण उससे, और इसलिए जब भी कृष्ण की सेवा करने में बाधा उत्पन्न हो, उसको बाधा को पार करके, वो चैलेंज को पार करके जब सेवा होती है तो अधिक स्मरण में रहती है, अधिक रुचिकर रहती है। तो इसलिए वो तथाकथित पति क्या निर्माण करते हैं, तथाकथित सास ननन पति क्या निर्माण करते हैं, एक बाधा उत्पन्न करते हैं। और प्रच्छन्न कामुकता, प्रेम जितना छुपाया जाए उतना बढ़ता है, तो गोपियों को सदैव अपना प्रेम छुपा के रखना पड़ता है। वो पत्नियों को, रुक्मिणी सत्यभामा को छुपा के रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जग जाहिर है, सबको मालूम है कि रुक्मिणी देव का प्रेम है कृष्ण के साथ और कृष्ण का प्रेम है रुक्मिणी के साथ, तो वो महान तो है ही, लेकिन उससे भी परम महान है गोपियों का प्रेम, क्योंकि छुपा के रखना पड़ता है, अंदर हृदय में प्रेम है और वो किसी को बता भी नहीं सकते, तो अंदर 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 ऐसा बढ़ता जाता है, जैसे वॉल्केनो का क्या कहते हैं, ज्वालामुखी अगर दबा के रखा जाए अंदर पृथ्वी के गर्भ में तो क्या होता है, उफन के बाहर आ जाता है। तो वैसे ये प्रेम है, अंदर दबा के रखते हैं, जब कृष्ण के साथ मिलन हो रहा है तो उफन के बाहर आता है तो ये एक लीला है, ये पहले ये समझना आवश्यक है, नहीं तो लोग सोचेंगे अरे तो कुछ, हमने फिल्मों में भी बहुत ऐसा देखा है कि कोई है वो कोई दूसरे किसी के साथ किसी की शादी हुई है और कुछ तो उनमें कुछ प्रेम प्रकरण चल रहा है, वो प्रेम प्रकरण नहीं है, वो विष्ठा मूत्र के शरीरों से कुछ प्रेम नहीं हो सकता प्रेम तो केवल सच्चिदानंद शरीरों से हो सकता है और सच्चिदानंद मन से। साधक जब कृष्ण को प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो गुरु कृपा से, उनकी देह भी चाहे हार्ड मास की देह है फिर भी उसका आध्यात्मिकीकरण हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, सनातन गोस्वामी कहते हैं बृहद भागवतामृत में, क्या कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति सुधा पाना देह दैहिक विस्मृते हैं तेषां प्राकृत देह भी सच्चिदानंद रूपता। जो कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहा है वो भक्त चाहे हार्ड मास के शरीर में हो तो भी उसको सच्चिदानंद समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी प्रवृत्तियां किसमें लगी हुई है, भक्ति में लगी हुई है। तो देखिए क्या होता है कि, तो सारी जो गोपियां हैं उनके माँ बाप उनको बहुत सारे जो जेवर हैं और बहुत सारे जो अन्य उपहार हैं, कीमती वस्त्र हैं और खाने के जो विविध व्यंजन हैं वो उनको भर भर के दे रही हैं, राधा रानी को, राधा रानी तो साक्षात राजकुमारी है, तो सोचिए वृषभानु महाराज और कीर्तिदा उनको क्या भर भर के पूरा बैलगाड़ी भरकर उनको घेवर और बहुत सारे महंगे महंगे इत्र और कस्तूरी और कुमकुम वो सब भर भर के दे रहे हैं। और राधा रानी बाकी गोपियों के साथ मिलकर इस वन जो दिख रहा है, ये वन, इसको घेवर वन कहते हैं, इस वन से गुजर रही है। और अचानक क्या सुनाई देता है राधा रानी को? कृष्ण की मुरली सुनाई देती है। मैके से ससुराल लौट रही है तो बीच में कृष्ण की मुरली सुनाई देती है और वो भाव विभोर हो जाती हैं, उनके कदम रुक जाते हैं, स्तंभित हो जाती हैं, गति स्तंभ हो जाता है। और कृष्ण उधर प्रकट होते हैं तो गोपियों के लिए सबसे महान उत्सव, कृष्ण का दर्शन ही सबसे बड़ा उत्सव है उनके लिए। कोई उत्सव दिवाली इत्यादि कोई उत्सव नहीं है उनके लिए, महोत्सव यही है। कृष्ण का, कृष्ण जिस समय दिखे वही घड़ी उत्सव है उनके लिए। तो कृष्ण कहते हैं, अरे तुम गोपियां क्या क्या लेके जा रही हो अपने घर पे, दिखाओ जरा मुझे। तो सब भरी हुई हैं गाड़ियां विविध उपहारों से। तो कृष्ण कहते हैं, तो सारी गोपियां कहती हैं और राधा रानी खास करके, कि हे प्रिय, ये सब आपके लिए ही है, आप जितना चाहे ले लो। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं, बोल रहे चलो सभी गाड़ियां मैं अभी नंदगांव लेके जाता हूँ। थोड़ा भी कुछ भी नहीं छोड़ रहे, थोड़ा थोड़ा लाद लाद के लेके जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं हर एक, बस एक नाम मात्र के लिए हर गाड़ी में। तो राधा रानी कहती है, आप जो, तो उसमें सारे जो घेवर थे सब कृष्ण सारे घेवर खा गए, जो खाकर पेट भर गया तो बच गए तो अपने अपने साथ लेके गए। बाद में जो सारे कीमती वस्त्र है, जो सारे अलंकार है, सब कृष्ण लेकर जा रहे हैं। तो कोई बोलेगा, अरे कृष्ण तो कितने स्वार्थी है, सब धन लूट कर लेके जा रहे हैं, और गोपियां कितनी निस्वार्थ हैं। बराबर है, आगे आगे देखते हैं लीला में क्या होता है। तो ये सब सखियों के साथ में लेकर राधा रानी फिर पहुंचती हैं यावट। फिर उसको अचानक स्मरण में आता है, अरे मेरी सांस क्या कहेगी, ये गाड़ी इतनी पूरी लदी हुई थी और इसमें इतना ही उपहार बचा है देखकर, हाँ मेरी सांस संशय करेगी और फिर मेरा क्या 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 सुनाएगी। तो अत्यंत वो भयभीत हो जाती है। और फिर जैसे ही उसने सोचा था वैसे ही होता है, जैसे ही वो आती है अपने घर के द्वार पर तो जटिला कहती है, अरे इतना ही कैसे बचा, जरूर उस लंपट कृष्ण ने सब लेकर गया होगा। तो राधा रानी शर्म लज्जा के कारण सिर झुकाए हुए घर में प्रवेश करती है। तो जटिला कहती है, अभी अभिमन्यु को आने दो, सब मैं उसको बता दूंगी, सब ये खबर बता दूंगी। तो राधा रानी अत्यंत भयभीत है। फिर अभिमन्यु आता है, उसको कहती है, अरे देखो ये वधु इतना सारा उसके माता पिता ने दिया होगा और सब लगता है ये कृष्ण को ही दे दिया सब कुछ। तो अभिमन्यु कहते हैं, कहाँ पे रखा हुआ है? हाँ ऐसे इस लीला में वो दिखाते कि दोनों लोभी हैं करके। असल में जटिला हो या कुटिला हो या अभिमन्यु हो, ये भी जड़ माया की घटन नहीं है, ये भी समझना चाहिए। वो भी आध्यात्मिक जगत के ही रहवासी हैं, बस वो एक रोल कर रहे हैं विलन का, ठीक है। और शाश्वत कर रहे हैं सदैव, रोल से बाहर नहीं आते वो, ठीक है, ताकि जो ये लीला है वो और भी रुचिकर बने। तो वो अभिमन्यु कहते हैं, कहाँ है दिखाओ, क्या लाइए जरा दिखाओ। तो दोनों लोभी हैं, तो देखते हैं, देखो देखो कितना कम लाई है। तो जिस आगार में, जिस कक्ष में रखा था, उसका दरवाजा अभिमन्यु खोलता है और ऊपर से घेवर की बौछार होती है दोनों के ऊपर, दोनों जटिला और अभिमन्यु और कुटिला तीन सब दब जाते हैं उसके अंदर। वो जो इतना भर भर के सारी सामग्री रखी हुई है उसमें लद लद के कृष्ण की इच्छा से, कि वो दोनों दोनों दफन हो जाते हैं उसके अंदर, इतना भरा हुआ है। तो कृष्ण का कहने का इस लीला का तात्पर्य है, कृष्ण की सेवा करने समय सोचना नहीं चाहिए कि मेरा क्या होगा और मेरे साथ क्या होगा, अरे ये सब दे दिया तो मेरा आगे क्या होगा, अरे नहीं ये हम जितना दे सकते हैं हमको देना चाहिए कृष्ण को। बाद में देखिए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते वैसा कृष्ण आदान प्रदान करेंगे हमारे साथ। ये इस लीला का सार है। और एक लीला देखते हैं, ठीक है, ये लीला देखते हैं हम, एक ये एक आखिरी लीला को सुनकर हम यहाँ पे विराम देंगे। ये भी एक आवश्यक है कि राधा रानी की सेवा करके क्या उसका फल है। तो दुखी कृष्णदास करके एक हमारे आचार्य हैं, वो वृंदावन पहुंचते हैं, उनको जीव गोस्वामी की शरण लेते हैं। जीव गोस्वामी उनको क्या सेवा देते हैं, कुंजों को झाड़ने की सेवा देते हैं। तो कोई कहेगा अरे कोई अच्छी विग्रहों के श्रृंगार करने की सेवा दे दो, ये कुंजों को झाड़ने की सेवा क्या है? तो ऐसा नहीं है, कृष्ण की सेवा, राधा रानी की सेवा, हर प्रकार की सेवा एक समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो रोज कुंज झाड़ते थे श्यामानंद, अरे श्यामानंद नहीं, इसका दुखी कृष्णदास, उनका नाम आगे श्यामानंद हो रहा है। तो रोज झाड़ रहे हैं कुंज, और कुंज को झाड़ते झाड़ते रो रहे हैं वो, राधा रानी के स्मरण करते करते। ऐसा नहीं कि सोच रहे कि अरे कभी खत्म होगा, कभी खत्म होगा। तो राधा रानी को स्मरण करके रो रहे हैं। अरे इससे एक श्लोक स्मरण हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। यत् किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदा रसनिधेर वृषभानुजाया तत्केलिकुंज भवनांगन मार्जनिस्याम। प्रभुनंद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, ऐसे कृष्ण जिनको दर्शन करने के लिए ब्रह्मा शिवजी और बाकी सब लालायित हैं, ऐसे कृष्ण भी जिनकी दासियों के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे राधा रानी के पास जाने दो, क्योंकि राधा रानी को मिलने का अधिकार, जो पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं ना हिंदी में, क्या कहते हैं उसको, वकालत नहीं, क्या पता नहीं, जो भी है आप समझ गए, अधिकार, हाँ पात्रता अधिकार या डिसीजन, निर्णय लेने का अधिकार, वो सब राधा रानी ने किसको दिया हुआ है, आपने सारी मंजरी किंकरियों को दिया हुआ है, दासियों को दिया हुआ है। वो जब उनके सामने कृष्ण को गिड़गिड़ाना पड़ता है कि मुझे एक बार मिलने दो राधा रानी से, वो कहेंगी हाँ तो फिर जा सकते हैं राधा रानी को मिलने। तो वैसे वैसी किंकरियों के चरणों के धूल प्राप्त करने के लिए हम क्या बनना चाहते हैं, वो कुंज की एक झाड़ू बनना चाहते हैं हम, कह रहे भवनांगन मार्जनी श्याम। अभी हमने सुना है कि हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, कभी हमने सुना है मैं झाड़ू बनना चाहता हूं, हम झाड़ू बनना चाहते हैं। तो ये लीला में ये झाड़ू मारते मारते रो रहे हैं राधा रानी का स्मरण करके। तो करते करते उनको एक दिन नूपुर मिलते हैं, जो इतने दिव्य हैं उनकी चमक कि इस जगत के नहीं है, तुरंत जानते हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि अरे कल के नृत्य के समय मेरा एक घुंगरू, एक नूपुर अदृश्य हो गए, हे ललिता तुम जाओ और वो दुखी कृष्णदास से लेकर आओ। तो ललिता वो नित्य लीला से इस प्रकट वृंदावन में एक बुढ़िया के रूप में आती है, वेश बुढ़िया का वेश धारण करती है, बुढ़िया के रूप में नहीं, और बोलती है अरे दुखी कृष्णदास कल तुमको नूपुर मिला था मैंने सुना, तो ये मेरे बहू के नूपुर हैं, मुझे चाहिए। तो दुखी कृष्णदास समझ जाते हैं यहाँ के कुछ मामला कुछ गड़बड़ है। तो वो कहते हैं कि जैसे आपके पास लॉस्ट एंड फाउंड में आपको कुछ बहुत महंगा कुछ मिल गया, और कोई आके आपको पूछता है कि अरे ये मेरा एक मोबाइल घूम गया है, शायद से आपको मिल गया है तो आप दे दो, तो आप क्या पहला प्रश्न क्या पूछोगे, प्रूफ पूछोगे, कैसे प्रूव करोगे, इसका मॉडल बताओ, इसका पासवर्ड बताओ, कुछ तो बोलोगे ना। तो वैसे ये बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हाँ इस नूपुर का जोड़ी जिसके पास है उसके पास लेके जाओ मेरे को। समझ गया ना, इसकी जोड़ी मिलनी चाहिए तब मैं समझूंगा उसका है करके, तो जिसकी जोड़ी है जिसके पास उसी को दूंगा। तो फिर ललिता देवी आकर वापस नित्य लीला में आकर बताती है राधा रानी को कि अरे वो जोड़ी मांग रहा है। तो राधा रानी कहती है अरे इतने हट कर रहा है तो जाओ उसको किशोरी कुंडों में डुबाओ और मंजरी रूप में धारण करवा के मेरे पास लेके आओ। तो उसको किशोरी कुंड में डुबाते हैं, डुबाती है ललिता और वो मंजरी का किंकरी का रूप धारण करके राधा रानी के सामने लेकर आते हैं उसको। तो राधा रानी कहती हैं कि अच्छा दिखाओ कहाँ पे मेरा ही गुम हुआ हुआ है। तो वो जो ये दुखी कृष्णदास जो अभी मंजरी के रूप में है, कनक मंजरी, तो वो उनको प्रदान करते हैं राधा रानी को। राधा रानी प्रसन्न होकर उनके माथे पर उसका छाप लगा देती है। उस छाप को श्याम मोहन छाप कहते हैं और उनको अपने हृदय से एक मूर्ति को, कृष्ण श्याम सुंदर के मूर्ति को प्रकट करके उनको बोलती है कि आप इसकी आराधना करो और आपका नाम हो गया कनक मंजरी और आपका साधक रूप में नाम हो जाएगा श्यामानंद, क्योंकि श्याम को या श्यामा को आपने आनंद दिया इसलिए आपका नाम श्यामानंद, दुखी कृष्णदास नहीं अभी श्यामानंद। आपका प्रमोशन हो गया। तो फिर वो लीला से बाहर आकर वापस साधक रूप धारण कर लेते हैं और उनको इस प्रकार से राधा रानी की कृपा प्राप्ति होती है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि राधा रानी की कोई भी किसी भी प्रकार की लीला हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, अगर योग्य भाव से हम उसको करेंगे तो अवश्य राधा रानी की कृपा होगी। और जब राधा रानी की कृपा है तो कृष्ण की कृपा उसके पीछे पीछे ही दौड़ती है। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो राधा रानी के चरणों में आज हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य हो कि जगत के अनित्य वस्तुओं से मन हटाकर केवल राधा रानी के चरणों में ही हमारा मन लगे और राधा रानी के चरणों में, चरण की धूली में, यानी राधा रानी के चरण धूली माने कौन है, हमारे सब गुरु वैष्णव जो हैं वो राधा रानी के चरण धूली है। तो उनमें हमारा मन सदैव आसक्त रहे, ऐसे उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।